नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। कुवैत के मंगफ इलाके में स्थित एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लगने से 49 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में करीब 40 भारतीय हैं। झकझोर देने वाली इस घटना के बाद विदेश मंत्रालय के MOS कीर्ति वर्धन सिंह नई दिल्ली से कुवैत रवाना हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में बताया कि ज्यादातर पीड़ित जले हुए हैं, कुछ शव इतने जल चुके हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल है। DNA टेस्ट के जरिए इनके शवों की पहचान की जाएगी। उन्होंने बताया कि वायुसेना का एक विमान तैयार है, जैसे ही शवों की पहचान हो जाएगी परिजनों को सूचित कर दिया जाएगा और हमारा वायुसेना का विमान शवों को वापस ले आएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 50वें G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली रवाना होंगे। इटली यात्रा के दौरान वो मेजबान प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ये PM नरेंद्र मोदी का पहला विदेश दौरा है। आपके कपड़े पर लगा दाग अगर हट भी जाए तो उसके निशान रह जाते हैं, लोग अब हमें शक की नज़र से देखते हैं। ये बात 35 साल के मोहम्मद अंजार आलम ने कही। आलम उन 5 मदरसा शिक्षकों में से एक है जिन्हें 30 मई 2023 को बिहार से महाराष्ट्र में 59 बच्चों की तस्करी के आरोप में गलती से गिरफ्तार कर लिया गया था। गलती से गिरफ्तार किए जाने की बात राजकीय रेलवे पुलिस ने खुद अपने बयान में कही है। ये सभी शिक्षक दानापुर पुणे एक्सप्रेस में सवार थे, तभी उन्हें मजदूर बच्चों की सप्लाई के शक में महाराष्ट्र के मनमाड और भुसावल रेलवे स्टेशनों पर राजकीय रेलवे पुलिस ने हिरासत में लिया था। एक गलतफहमी की कीमत क्या हो सकती है, इस सवाल का जवाब हम 35 साल के मोहम्मद अंजार आलम की जिंदगी से ले सकते हैं, जिन्हें एक ऐसे अपराध के लिए जेल जाना पड़ा जो किया ही नहीं। अब परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और आलम अपने ऊपर लगे बेबुनियाद दाग से चिंता में रहते हैं। राजकीय रेलवे पुलिस अधिकारियों ने मई 2024 में कहा कि 5 शिक्षकों के खिलाफ मामला इस साल मार्च में बंद कर दिया गया था। जांच में ये निष्कर्ष निकाला गया कि उनके ऊपर हुई FIR एक गलत फहमी के कारण दर्ज की गई थी। मनमाड GRP के इंस्पेक्टर शरद जोगदंड ने कहा कि हमने पाया कि बच्चों की तस्करी जैसा कोई मामला नहीं था और अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी गई थी। शिक्षक अंजार आलम का दावा है कि उन्होंने 3 महीने जेल में बिताए, जबकि उनके साथ ही शिक्षक सद्दाम हुसैन सिद्दीकी, नुमान आलम सिद्दीकी, एजाज जियाबुल सिद्दीकी और मोहम्मद शाहनवाज हारून ने 12 दिन पुलिस हिरासत में और 16 दिन नासिक जेल में बिताए। 30 मई 2023 को बिहार के अररिया जिले के 8 से 17 साल के उम्र के 59 बच्चे अपने 5 शिक्षकों के साथ मदरसों में पढ़ने के लिए पुणे और सांगली जा रहे थे। दिल्ली में किशोर न्याय बोर्ड और रेलवे बोर्ड से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए रेलवे सुरक्षा बल ने एक NGO के साथ मिलकर इन बच्चों को बचाया और शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त RPF अधिकारियों ने दावा किया था कि 5 व्यक्ति अपनी यात्रा से जुड़े दस्तावेज नहीं दिखा पा रहे थे, जिसके रहते भारतीय दंड संहिता के धारा 370 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। बच्चों को 12 दिनों के लिए नासिक और भुसावल के आश्रय गृहों में ले जाया गया, क्योंकि अधिकारियों को संदेह था कि उन्हें तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। जब उनके नाराज माता पिता ने उनकी वापसी की मांग की तो बच्चों को नासिक जिला प्रशासन द्वारा बिहार वापस भेज दिया गया। 5 में से एक शिक्षक एजाज इस मामले को अपने जीवन का सबसे भयावह दौर बताते हुए कहते हैं कि उनका 9 साल का बेटा उस दिन ट्रेन में बच्चों के साथ था। एजाज कहते हैं कि जब हमें रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया गया तो उन्होंने हमारे बैग की जांच की और कहा कि हम चरस और गांजा की तस्करी कर रहे हैं। हम बच्चों को बिहार से महाराष्ट्र के एक मदरसे में ले जा रहे थे ताकि उन्हें अच्छी धार्मिक शिक्षा, भोजन और रिहाइश मिल सके। एजाज कहते हैं कि वो अकेले अपने घर में कमाने वाले हैं। जब वो जेल में थे तो घर में खाने तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। अररिया के रहने वाले शिक्षक सद्दाम ने कहा कि घटना के बाद उनके माता पिता इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया। वो कहते हैं कि मेरे पास सभी बच्चों के दस्तावेज थे और मैंने पुलिस को वीडियो कॉल के जरिए उनके माता पिता से जोड़ने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने स्थानीय सरपंच या माता पिता से प्राधिकरण पत्र की मांग की। चूँकि हमारे पास ये नहीं था, इसीलिए पुलिस ने जल्दी से हमारे खिलाफ बाल तस्करी का मामला दर्ज कर दिया। किसी के खिलाफ इतना कठोर मामला दर्ज करने से पहले सबूतों की ज़रूरत होती है, लेकिन पुलिस ने ये भी नहीं सोचा कि ये एक कदम कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।